सी बूंदे अमृत की दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की।
ओम शांति। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, विदर आर यू गोइंग? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on the golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa boughs the champa buds are blowing, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten. The voices of the fairy folk are calling me, oh listen. Honey child, honey child, the world is full of pleasure, of bridle songs and cradle songs and sandal sainted ledger. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron blowing. Your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? The bridal songs and the cradle songs have cadences of sorrow. The laughter of the sun today, the wind of the death tomorrow. Far sweeter sound, the forest notes, where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay. The fairy folk are calling. Sarojini Naidu ka ye geet hai, ek kavita, gaon ka geet, jisme maa apne beti se baat kar rahi hai. माँ कहती है, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने सारे गहने हवाओं में बिखेर दोगी? क्या तुम इस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने जैसे अन्न में पाला? क्या तुम उस प्रियतम को दुखी करोगी जो तुमसे विवाह करने आ रहा है? माँ अपने बेटी को रोकने की कोशिश कर रही है, परंतु वो बेटी रुकने को तैयार नहीं है। वो कहती है, हे मेरी माँ, मैं उस जंगली वन की ओर जा रही हूँ जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही है, जहाँ कोयलों से गूंजते नदी के द्वीपों पर कमल चमक रहे हैं, जहाँ परियों की मधुर आवाज़ें मुझे पुकार रही है, सुनो। वो कहती है, मैं रुकूंगी नहीं, मुझे आवाज़ आई है, मैं जा रही। उसकी माँ कहती है, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, ओ मधुर बच्ची, यह संसार सुखों से भरा हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो? विवाह गीत, अभी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा पति आ रहा है। विवाह गीतों, लोरियों और चंदन सुगंधित विश्राम से तुम्हारे विवाह के वस्त्र करघे पर बुने जा रहे हैं, चांदी और केसरिया रंग में दमकते हुए तुम्हारे विवाह के पकवान चूल्हे पर तैयार है, फिर तुम कहाँ जा रही हो? वो बच्ची कहती है, विवाह गीतों और लोरियों की लय में भी दुख छिपा है। वो कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव केडेंसेस ऑफ सॉरो। विवाह गीतों में और लोरियों की लय में भी दुख छिपा है। आज सूर्य की हंसी है तो कल मृत्यु की हवा बह सकती है। वन के झरनों की मधुर ध्वनि मुझे इससे कहीं अधिक प्रिय लगती है। हे मेरी माँ, मैं रुक नहीं सकती, परियों का लोक मुझे पुकार रहा है। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे। द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट Dreams are falling. जिसने वो आवाज़ सुन ली है वो रुक नहीं सकता। संसार के सुखों में छिपे हुए दुख को जिसने देख लिया है वो यहाँ रुक नहीं सकता। इसको कहते हैं द डिवाइन कॉल। फिर किसी को वो पूछता नहीं है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं यहीं रहूं कि कहीं और जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। द डिवाइन कॉल, द हायर कॉल। एक बार वो आवाज सुनाई दे गई फिर व्यक्ति नहीं रुकता। द ब्राइडल सॉन्ग, द हैव केडेंसेस ऑफ सॉरो। सुख में जिसे संसार सुख मान रहा है फिर वो सुख नहीं भासता, उसमें दुख दिखाई देता है, या फिर जो अब तक हमारा भ्रम है वो टूट जाता है। इस भ्रम का टूटना ही अध्यात्म है। जो लग रहा है ये बहुत अच्छा, कोई स्मृति कोई याद। कर्म 5 मिनट का था, क्रिया 5 मिनट की थी, घटना 5 मिनट की थी, परंतु 5 साल हो गए। उसकी स्मृति, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, रीप्ले मन में हो रहा है। उससे चेतना मुक्त नहीं है। अपने सारे भ्रमों को तोड़ना ही जागरण। उसकी माँ को सुख दिखाई दे रहा पर उसे नहीं, क्योंकि उसे आवाज आई है, जंगल से आवाज आई है, किसी परिलोक से आवाज आई। इसलिए वो बच्ची कहती है मदर माइंड आई कैन नॉट, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। द हायर कॉल, एक आवाज, द डिवाइन कॉल। फिर व्यक्ति किसी से कंसल्ट नहीं करता क्या करना है और क्या नहीं करना। आज की अव्यक्त मूल्य, डेट 2011 15-12 दिसंबर। ये मुरली 2019 में भी चली है और सुबह की क्लास में ही रिवाइज भी हुई है। सेम डेट 15 दिसंबर 2019 बाबा मिलन में चली है नीचे, और 16 दिसंबर 2019 में इसी क्लास में रिवाइज भी हुई है। तो यह चौथी बार हो रहा है। बेफिक्र बादशाह किसे कहा जाता है, और अभी अभी लास्ट संडे जो मुरली रिवाइज हुई वो भी ऐसी है। तो बेफिक्र बादशाह बनने की विधि, 10 बातें थी उस मुरली में। कौन सी? पहला, फिक्र देकर फकूर ले लो। दूसरा, तेरे को मेरे में, मेरे को तेरे में, मेरे को तेरे में बदल दो। तीसरा, 1 सेकंड में बिंदी लगा दो। चौथा, सब कुछ दे रहा। सेकंड में अशरीरी बन, वही तो है तीसरा। और आगे आगे देखेंगे। बेफिक्र बादशाह किसे कहा जाता है जिसने अपनी सभी फिक्र किसको बाप को देकर क्या ले लिया, फकुर ले लिया। दूसरी विधि क्या है, मेरे को तेरे में। अपनी डायरी में लिखेंगे एक तरफ मेरे की लिस्ट जो हम समझते हैं, मेरे स्टूडेंट, मेरा सेंटर, मेरी वस्तु, मेरा पेन, और दूसरी तरफ लिखेंगे वही वाली चीज़ बाबा की, बाबाज पेन, बाबाज घर, होम, बाबाज सेंटर। ऐसी पांच बातें लिखेंगे, सबको लिखना है। जिनके पास पेन पेंसिल नहीं है, डायरी नहीं है, उनको दे दिया जाए। कागज और पेन दे दो जिनके पास नहीं है। मेरे पैसे अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ लिखेंगे बाबा के पैसे। मेरा टैलेंट तो दूसरी तरफ लिखेंगे बाबा का टैलेंट। मेरा मोबाइल दूसरी तरफ लिखेंगे मेरा मोबाइल। हर एक को अपना अपना लिखना है। माई को ट्रांसफॉर्म करना है बाबा। मेरा शरीर कुछ भी जिसमें मेरा बहुत सहज आता है वो। बादशाह वो नहीं है कि जिसके पास बहुत कुछ है, बादशाह वो है जिसके पास कोई कमी नहीं। चिंता की होती, बेफिक्र बनने की विधि क्या है। व्हेन यू रिजाइन एज अ मैनेजर ऑफ दिस यूनिवर्स, जब इस विश्व के मैनेजर पद से हम रेजिग्नेशन देते हैं तब व्यक्ति चिंता मुक्त होता है। अभी वो कौन है, मैनेजर है। वो चाहता है कि लोग हमारी इच्छा से व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी सुविधा का ध्यान रखें। कौन सी इच्छा, कि परिस्थितियां मेरी सुविधाओं का ध्यान रखें, लोगों मेरे विषय में सोचे, मेरे से पूछे। भविष्य मेरी योजनाओं के अनुसार चले, यह है फिकर। परिस्थितियां, संकट, पहले इनविटेशन लेटर भेजे कि मैं कल इतने बजे आ रही हूँ। मुझे पिकअप कर लेना। यह है दुख का कारण, यह है चिंता का कारण। जीवन को अपने नियंत्रण में लेने का सफल प्रयास फिकर है, चिंता है, टेंशन है। फिकर, फिक्र, टेंशन, भय, लोग क्या कहेंगे मेरे विषय, या ऐसा क्यों कहते, यह है चिंता का कारण। जैसे मुझे लगता है वैसे सबने करना चाहिए। हो गया, तो यह है सबसे पहला अभ्यास। प्रश्न दूसरा, बेफिक्र जीवन की सबसे बड़ी निशानी क्या है। वो एक ताज, एक है बोझ वाली टोकरी, हल्कापन, निश्चिंतता। और बोझ नहीं है इसकी क्या निशानी है, अच्छी नींद बिना गोली के, और खुशी, और टेंशन नहीं है कोई, हल्कापन, कोई बोझ नहीं, खुशी, गुस्सा और एक स्पष्टता रहेगी। क्या रहेगी? स्पष्टता, नो कन्फ्यूजन, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, लचीलापन। हमारा चेहरा जो है हमारे मन की गुप्त डायरी है, दर्पण। कोई कितना भी कहे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, परंतु उसका चेहरा देखकर पता किया जा सकता। तो ब्राह्मण जीवन, बेफिक्र जीवन की निशानी क्या है? लाइट का ताज, चेहरे पे हल्कापन, बोझ रहित, ये सारी चीज। अमृत वेला किस लिए किया जा रहा है? ताकि दिनचर्या की शुरुआत अच्छी हो। पुरुषार्थ किस लिए किया जा रहा है? ताकि जीवन में टेंशन ना हो। पर यदि अमृत वेला ही पुरुषार्थ टेंशन का कारण हो, तो यदि भोजन में परिवर्तन किया जा रहा है, क्यों? ताकि हल्कापन आ जाए। पर यह परिवर्तन की क्रिया ही अगर टेंशन दे रही हो, तो मुरली किस लिए पढ़ी जा रही है? ताकि जीवन में खुशी आए, ज्ञान आए। पर यह पढ़ने की ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चिंता का कारण है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं होता, यही टेंशन है, है कि नहीं? जो टेंशन से मुक्त होने की विधि थी, वही टेंशन का कारण बन गया है। अब क्या किया जाए? दूसरी विधि खोजी जाए, राइट? शब्द बदली किया जाए। भट्टी, भट्टी शब्द में भी बड़ा स्ट्रेस छिपा हुआ है। भट्टी मतलब अभी सुनना है किसी को एक घंटा, भट्टी मतलब अभी योग में बैठना ही है जबरदस्ती। तीसरा प्रश्न, फिकर को फकूर में बदलने की सहज विधि क्या है? मेरे को तेरे में बदल देना, जो जो मेरा है उसको क्या कर देना है? तेरा, मेरी प्लानिंग, मेरा डिसीजन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सेवा, बोझ किसको दे देना है? बाबा को दे देना। पर कैसे? स्वामित्व को छोड़ देना, ओनरशिप, जिम्मेदारी निभानी है परंतु स्वामित्व जो है वो दे देना है। तो ये अभ्यास है, मेरा परिवार, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। यह भी तो क्या क्रिएट करता है? टेंशन। तीसरा प्रश्न, मेरे को तेरे में बदलने का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वही अहंकार, ममत्व को छोड़ना। समर्पण अर्थात हारना नहीं है, जो झूठा मालिक बन के बैठा है उस झूठे मालिक को हटाना है। वो मालिक था नहीं, उसने अपने आप को मान लिया है। ब्राह्मण आत्मा के डबल ताज कौन कौन से हैं? एक तो लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का ताज, बादशाहपन का ताज। पुरुष तीन शब्द है केवल, उसका अभी हम अभ्यास करेंगे। और ये तीन शब्द का ही पुरुषार्थ है। कौन सा? एबीसी नहीं, लाइन है एक, मैं आत्मा हूं, यह क्या है? पुरुषार्थ। पर इसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ना। क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा हूं, इसके साथ कोई विशेषण नहीं जोड़ना, कोई स्वमान नहीं जोड़ना, कोई शब्द नहीं जोड़ना, कोई नंबरिंग नहीं जोड़ना, कोई मंत्र नहीं जोड़ना, आगे पीछे कोई और लाइन नहीं जोड़ना। यही शब्द है, बस इतना ही पुरुषार्थ करना है। कौन सा? मैं आत्मा हूँ। हमारा स्वभाव क्या है? इसके साथ विशेषण जोड़ने का। मैं ज्योतिर्मयी आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सूक्ष्म आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो अभ्यास कौन सा करना है? मैं आत्मा हूँ, इसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ना। मैं भ्रुकुटी के मध्य हूँ, ये भी नहीं जोड़ना। मैं सूक्ष्म हूँ, ये भी नहीं जोड़ना। कुछ भी नहीं जोड़ना। शुद्ध खालिस पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? मैं आत्मा हूँ। तो अभी इसका अभ्यास करेंगे, देखना है कितना देर हम कर सकते हैं। तो 2 मिनट का टाइम है, तो अभी स्थिर बैठेंगे और रिपीट करना है तो मन में रिपीट कर सकते हैं, या फिर रिपीट भी नहीं करना है, केवल अनुभव, मैं आत्मा हूँ। तो इसमें टाइम लिमिट लगा रहे हैं। स्टॉपवॉच नहीं, टाइमर। 2 मिनट तक ये अभ्यास करना है। इस बीच यदि और कोई विचार आए तो उसको हटाना है। ये देखना है ये विचार में हम कितना समय टिकते हैं। कुछ भी विशेषण, स्वमान, शब्द, इधर की बातें, प्लेस, स्थान, कुछ नहीं जोड़ना है। केवल एक संकल्प, मैं आत्मा हूँ। स्टार्ट। आंखें खुली या बंद, ये संकल्प, मैं आत्मा हूँ। कुछ भी जोड़ना नहीं है, नया शब्द नहीं जोड़ना है, कोई विशेषण नहीं जोड़ना है, कोई स्वमान नहीं जोड़ना है, कुछ भी एडिशन नहीं करना है। यदि हमसे कोई पूछे आप कब से ज्ञान में हो, तो हम कहेंगे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल। अगला प्रश्न, इन 10 साल 20 साल 30 साल और 40 साल में आत्मा अभिमानी कितना समय रहे? टाइम 40 मिनट। कितना टाइम? इसका अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे? कितना टाइम आत्मा रहे या आत्मा समझे? टोटल पीरियड ऑफ ज्ञान। इसलिए ज्ञान में बहुत सारे जो अभ्यास है वो वास्तव में कहीं ना कहीं वो भी भटका देते। जो मूल अभ्यास है वो एक ही है, ओनली वन। उसमें भी स्वमान भी इधर उधर चले जाते हैं कि एकदम गहराई में सबकॉन्शियस और डीप डीप डीप, ये एक इतना डीप चला जाए, इसके लिए क्या किया जाए? ये है प्रश्न। उसकी क्या विधि है जिससे अभ्यास ही कैसे करें? अभ्यास प्रश्न यही है। सबसे पहले तो अमृत वेले इसका अभ्यास किया जाए। दूसरा, सबसे पहले अफॉर्मेशंस अर्थात बार बार रिपीट करना उसको। तो टाइम सेट करना है, 5 मिनट का टाइम, और उस 5 मिनट में एक ही लाइन बस, मैं आत्मा हूँ, नो एडिशंस। स्टेप वन, अफर्मेशंस के साथ इमोशंस को जोड़ना। कोई भी चीज मन की गहराई में कब जाती है? जब उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती है। फीलिंग्स जुड़ जाती है, डीप फीलिंग्स। एक सोल होना कैसे फील करता है। तीसरा लेखन, तीसरा क्या करना है, लिखना। अगला माइक्रो प्रैक्टिसेस। एक होता है एक लंबा सेशन मैं आत्मा हूं का, वो नहीं करना है। माइक्रो प्रैक्टिसेस, माइक्रो मेडिटेशन, 5 मिनट किया छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस 5 मिनट किया फिर छोड़ दिया, 1 मिनट किया छोड़ दिया, फिर वापस करना, मल्टीपल सेशंस करना, एक लॉन्ग सेशन नहीं हो। पढ़ाई भी जो की जाती है स्पेस्ड रीडिंग कहा जाता है उसको, जो बच्चे पढ़ते हैं ना यूजी पीजी के लिए, उनको क्या क्या कहा जाता है, लंबा एक सीटिंग नहीं करना है। पोमोडोरो टेक्निक, टुकड़े टुकड़ों में, किश्तों किश्तों में, थोड़ी देर बैठो 40 मिनट्स, उठ जाओ फिर वापस आओ। तो क्या करना है, माइक्रो प्रैक्टिसेस। फिर दूसरी बात, बिफोर एक्टिविटीज, कौन बोल रहा है, आत्मा बोल रही है। किससे मिल रहे है, आत्मा से मिल रहे। कौन खा रहा है, आत्मा खा रही। प्रैक्टिस एक्टिविटी, क्रिया के साथ आत्मा को लाना। समान एक अलग अभ्यास है, समान नहीं, केवल आत्मा और क्रिया बस। दूसरा बीच में कुछ नहीं लाना, शुद्ध खालिस। अगला विजुअलाइजेशन, देखना उसको, यहां पर देखना। आत्मा और परमात्मा दोनों ही कैसे हैं, सूक्ष्म है। क्या परमात्मा का चित्र बनाया जा सकता है, ये प्रश्न है। जो चित्र बने हैं, या वो अगर जो विजन में देखा जाता है चित्र, सतयुग का चित्र देखा किसी ने, उसने पेंटर को बताया, या पेंटर खुद ही संदेशी है और उसने चित्र देखा, पर सतयुग के कलर यहाँ कलर थोड़ी ना है, इस दुनिया के कलर सतयुग के कलर नहीं है, ये यहाँ के तत्व अलग है, वहाँ के तत्व अलग है। परमात्मा जो है वो निराकार है, उसका कोई कितना भी कहे कि ये ट्रांसलाइट है, ये पिक्चर है, ये ऐसा है, वो विचित्र है, उसका चित्र बनाया ही नहीं जा सकता। सबसे पहली बात, इम्पॉसिबल। हाँ, हम जो बनाते हैं कि भाई ये ऐसा है, फिर वो ऐसा है, फिर उसकी किरणें हैं, किरणें निकल रही है, ऐसी कोई किरणें निकलती है नहीं। कौन सी किरणें निकलती है, किरणें तो इस दुनिया का शब्द है, किरणें इस डायमेंशन का शब्द है, उसकी कौन सी किरणें, ये किरणें कहाँ से बनाई, ये किरणें कहाँ से आई, उसका कौन सा कलर, कलर तो तुम्हारे इस दुनिया के रंग है, ये दुनिया का है, वहां रंग है कोई। लाल तो इस दुनिया का रंग है वो बन ही नहीं सकता, जो रंग बनाओगे वो गलत बनेगा। वो कुछ बनाया है ताकि हम समझ सके, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके, उसका ना तो रूप का चित्र बन, उनका ना तो चित्र बन सकता है, ना कोई रंग, ना सतयुग का कोई चित्र बन सकता है, इम्पॉसिबल ने बनाए तो क्या तो करना है, विजुअलाइज करना है उसको।
परमात्मा का सही चित्र मतलब दिखाया इतनी देर बाद,
हाँ, 50s में, पहले नहीं था। उसके बाद में अगली विधि कौन सी है, स्लीप प्रोग्रामिंग। सोते समय मैं आत्मा हूं, और कुछ भी ऐड नहीं करना है उसमें। लिखना तो बोल दिया, रिपीटेशन, लाइन बोलना फिर साइलेंस, फिर लाइन बोलना फिर साइलेंस, ये भी एक टेक्निक है। मैं आत्मा हूँ फिर अनुभव, फिर मैं आत्मा हूँ फिर अनुभव, फिर मैं आत्मा हूँ फिर अनुभव। तो आत्मा को क्या करना है, फील, फील करना। और दूसरा परिस्थितियों के समय कोई क्रिटिसाइज करता है, मैं आत्मा हूं। कोई निंदा करता है, मैं आत्मा हूं। परिस्थिति आती है, मैं आत्मा हूं। और एक अभ्यास, मैं आत्मा हूं को श्वास के साथ जोड़ना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, ये जो श्वास है उसके साथ उस अभ्यास को जोड़ देना, मैं आत्मा हूं। तो सभी आंखें बंद करके बैठेंगे, आने वाला श्वास और जाने वाला श्वास दोनों के साथ वो संकल्प जोड़ना है 1 मिनट। हो सके तो लंबी लंबी सांस भी ले सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि मध्यम एकदम हल्की हल्का श्वास होता है उसके साथ में फिर जोड़ नहीं सकेंगे, तो बीच बीच में थोड़ी गहरी गहरी सांस ले लेना है। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट एंड द फाइनल चैप्टर, यही है, यही एकमात्र पुरुषार्थ है। तो आज ये सारी चीजें करनी है, एक तो माइक्रो प्रैक्टिसेस, परिस्थितियों में प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस के साथ में क्रिया, क्रिया से पहले ये प्रैक्टिस, सोते समय ये प्रैक्टिस, अमृत पहले, दिन की शुरुआत मैं आत्मा हूं और दिन का एंड मैं आत्मा हूं, बीच में भी मैं आत्मा हूं, कितना नया पॉइंट है, कितना नया है ना कि मैं आत्मा हूं, आज ही पता चला, ऐसा अनुभव करना है। अगला प्रश्न, दिल तक पर कौन बैठ सकता है, जिसने बाप को अपने दिल में बिठाया है वो, और दूसरा जो मास्टर सर्व शक्तिवान है।
पांच तत्वों की देखो मिट्टी ही का,
पांच तत्वों का है इसलिए इसको मिट्टी कहा गया है। जो जो चीज हमें मिट्टी से जोड़ती है उससे ऊपर उठना है, भारी करती है उससे ऊपर उठते जाना है। सबसे ज्यादा मिट्टी से जोड़ने वाला उसको धीरे धीरे कम करना है, 3 बार है तो 2 बार, 2 बार है तो 1 बार, क्योंकि अनाज अर्थात मिट्टी तत्व, धरती तत्व है उसमें, वो भारी करता है। हम मिट्टी के घर में रहने वाले प्रकाश है, हम कौन है, मिट्टी के घर में रहने वाले प्रकाश। संगम में किन 2 बातों पर विशेष अटेंशन देना है, समय और व्यर्थ संकल्प समाप्त करना, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्यों है, क्या करता है ये सारे व्यर्थ संकल्प। वही रिकॉर्डिंग हम क्या करते रहते हैं, घटनाओं की रिकॉर्डिंग मन में रिपीट करते रहते हैं और इससे व्यर्थ चिंता पैदा होती है। हम बात बढ़ रहा है,
होता है उसको बंद कर देती जैसे इंसुलिन,
वो अलग बात है, पर ये मन क्रिएट करते रहता है, नई नई चिंताओं को क्रिएट करता है। तीव्र पुरुषार्थ थी बनने का मुख्य अभ्यास क्या है, सेकंड में बिंदी लगाना, मैं आत्मा हूं। अभ्यास को क्या करना है, थोड़ा सीमित कर देना है, बहुत फोकस्ड कंसंट्रेटेड। सोमान का अभ्यास एक अलग अभ्यास है, परंतु वो बहुत पर मूल अभ्यास यही है, इसके लिए अलग से टाइम निकालना। हाँ, सोमान का अभ्यास चिंतन के लिए अच्छा है, रिपीटेशन के लिए नहीं, चिंतन के लिए बहुत अच्छा। तो सेकंड में बिंदी लगाना, सेकंड में बिंदी लगाना।
हमारे यज्ञ में ज्ञान की शुरुआत यहीं से हुई।
गुरुवार को विशेष रूप से किस प्रकार मनाना चाहिए? किसी एक वरदान को अमृत वेले से स्मृति में रखकर पूरा दिन क्या बनना उसका स्वरूप। ये केवल गुरुवार नहीं, हर दिन। वरदान सुनना आसान है, वरदान बनना कठिन है। क्या बनना है वरदान? केवल सुनना नहीं है, वरदान बन जाना है। मुरली सुनना आसान है, मुरली बनना कठिन है। तो ये है अभ्यास। रविवार को कौन सी विशेष साधना करनी है? छुट्टी करनी है किसकी? आज तो यही अभ्यास करना है। आज संडे का एकमात्र अभ्यास है, कोई स्वमान उसमें जोड़ना नहीं है, शुद्ध खालिस अभ्यास, एकदम प्योर सात्विक। मैं आत्मा हूं। कितनी बार करेंगे ये अभ्यास? आज धुन मत लगाओ, धुन परिणाम है। धुन अगर पुरुषार्थ करेंगे धुन लगाने का तो टेंशन है, क्योंकि लगती नहीं है धुन। धुन क्या है? धुन इज रिजल्ट, इंटरेस्ट का। जिसमें रस आने लगता है उसकी धुन लगती है। अब जिसमें रस ही नहीं है, बच्चे को कहो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तुमको धुन लगनी चाहिए, वो कहता है अब मुझे धुन लगानी है, धुन लगानी है। तो कैसे लगेगी? एकाग्रता परिणाम है रस का। हमें जिस चीज में रस आने लगता है तब धुन लगती है। तो आज यही अभ्यास है, एक होमवर्क। वरदान स्वरूप बनने का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल पढ़ना या दोहराना नहीं, बस उसे अपने धारण करना, प्रत्यक्ष करना चेहरे वाणी कर्म में। बाप के साथ संपन्न संपूर्ण गाने का अभ्यास क्या है? सेकंड में बिंदी लगाना, एक सेकंड में देहभान से हटकर क्या करना? कल भी कहा था इमरजेंसी मेडिटेशन। इमरजेंसी मेडिटेशन अर्थात तुरंत 30 सेकंड के लिए अपने आप को आत्मा में स्थित कर देना। ओनली 30 सेकंड, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तुरंत इमरजेंसी बटन। घर घर में संदेश पहुंचाना क्यों आवश्यक है? खाली बैठे इसलिए। तो घर घर में संदेश फैलाना है, सभी डायरी खोलेंगे अपनी, उसमें केवल 4 या 5 शब्द हो, आप हर घर में कौन सा संदेश देना चाहेंगे? जैसे उदाहरण, मेरा बाबा आ गया, इतनी लाइन। दूसरा हो सकता है स्वयं को जानो, तो आपको एक लाइन लिखनी है जो हर घर घर में पहुंचानी है। चार्ट ये दो नहीं लिखना, एक ही लाइन। जैसे प्रेम से जियो, खुशियां बांटो, एक लाइन जिसमें कम से कम 2 या 3 या 4 शब्द हो बस। आपको हर घर को कौन सा संदेश देना है? एक ही छोटी सी लाइन। हाँ अभी बताओ मत कोई भी एक लाइन, छोटी सी लाइन लिखनी है, पर वो लाइन बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, इसलिए जल्दी नहीं करो लिखने की। जॉन कीट्स 24H, बायरन 31 एंड पर्सिविसी शेली 29, पर पूरा एमए इंग्लिश लिटरेचर में इनका साहित्य है, इनकी कविताएं अब तक लोच रोक कि इसके विषय में कुछ लिखो। कहानी थी बाइबल की, जीसस क्राइस्ट के चमत्कार की। जीसस क्राइस्ट एक शादी में जाते हैं, वहाँ पर शरबत होता है, शरबत ख़त्म हो जाता है तो फिर उनको चार घड़े शरबत बन जाते हैं। ये है चमत्कार जो बाइबल में दिखाया गया है, उसके बारे में लिखो। एक घंटे का टाइम है, सब बच्चे लिखते हैं, वो लॉर्ड बायरन बैठा रहता है। लास्ट में टीचर आता है एग्जाम पेपर कलेक्ट करने, तो तुमने क्या लिखा? वो टीचर आने के बाद एक लाइन लिखता है और छोड़ देता है। लाइन क्या थी? अंग्रेजी में वाटर को फीमेल माना जाता है। The Lord looked at her and she blushed. अर्थात मालिक ने उसकी तरफ देखा और वो शर्माई। मतलब पानी किसमें कन्वर्ट हो गया? शरबत में। इसके लिए उसने ये लाइन लिखी थी। ये लाइन कैसी है? पावरफुल। The Lord looked at her and she blushed. ऐसी पावरफुल लाइन लिखनी है। क्या लिखी बताओ? क्या लिखा? अब नहीं तो ये रूटीन वाले लाइंस नहीं चाहिए। समय को पहचानो, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए दिन में लिखना आज। अभी जो लिखा वो ठीक है, कुछ ऐसी छोटी सी लाइन हो और जितने कम शब्द हो उसके लिए चिंतन बहुत अधिक चाहिए। सदा खुश रहो, खुशियां बांटो, ये रूटीन है। व्हाट द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन हैज अराइव, दिस इज न्यू एंड यूनिक। लाइन कैसी हो? यूनिक। हमारा चिंतन भी कैसा हो? यूनिक चिंतन हो। वही 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 रिपीट अगर हम करते रहे तो हम बोर हो जाते। वही वही शब्द को हम प्रयोग करते रहे, व्यर्थ संकल्प नहीं करो, पुराने संस्कार का त्याग करो, तो ये सारे शब्द जो है, तो चिंतन में क्या लानी है? यूनिकनेस। और उसके लिए बहुत ज़्यादा एकांत और बहुत ज़्यादा साइलेंस चाहिए और प्रकृति का सानिध्य चाहिए, तो कहीं नया चिंतन, नई पॉइंट्स टच होती है। छोटी छोटी चीज़ों को देखकर पॉइंट्स टच होती है, नहीं तो मन उसी दायरे में, उसी ढर्रे पर चलते रहता है। उसको वहाँ से तोड़कर एकांत में किसी पहाड़ पर, पत्थर पर जाकर बैठो, नए स्थान पर जाओ, रोज रोज बैठ जाओ, और ये संकल्प के साथ नहीं कि मुझे कुछ नया चिंतन करना है, ये भी छोड़ देना है। अपने आप बैठो, बस कोई चिंतन ही नहीं, बस बैठे, अपने आप टच होगा, अपने आप। अगर ज़्यादा पुरुषार्थ किया कि मुझे सोचना है, तो वो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेस, टेंशन क्रिएट होगा। इसलिए रिलैक्स्ड, खाली बैठ जाओ और सोचो। सोचना भी नहीं है, बस देखो। और ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा ही, मिला तो ठीक, नहीं तो ठीक है, वापस आ जाओ। था उसकी बनाई हुई चीज़ें इतनी यूनिक रहती थी, इतनी यूनिक कि अगर कोई घर पर जाए और वहाँ पर सोफ़ा रखा है, उस कारपेंटर का बना है, तो लोगों को लगता था जाके उस सोफे पर बैठूं, उसमें आकर्षण था एक उस सोफे पे। उसने झूला अगर बनाया है लकड़ी का, तो लोगों को लगता था इसमें जाके बैठे, अजीब सा आकर्षण रहता था। उसको पूछा गया, तुम ऐसा क्या करते हो? वो कहता है कि मैं जंगल में जाता हूं, एक 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 पेड़ से बात करता हूं, क्या तुम कुर्सी बनने के लिए तैयार हो? फिर मैं वेट करता हूं। और कई दिन, तो कुछ दिन तक झाड़ बोलते ही नहीं थे, तो मैं इंतजार करता हूं। फिर दूसरे झाड़ के पास, क्या तुम सोफा बनने के लिए तैयार हो? वो बात ही नहीं करते थे। कई बार एक महीना लग जाता है मुझे। फिर कभी कभी थोड़ा सा कोई पेड़ झुकता हुआ नजर आता था कि उसकी इच्छा है, भाई मैं बनना चाहता हूँ। फिर मैं उससे परमिशन लेता था, अच्छा तुम बनना चाहोगे, क्या मैं तुमको काटूँ, तुमको दर्द तो नहीं होगा? उसकी परमिशन लेकर फिर उसको काटता था, और फिर उसको लेके जंगल में चला जाता था। तुरंत नहीं बनाता था, फिर छुट्टी लेता था, पहले दिन ये भूल जाता था कि अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरी प्रसिद्धि होगी, मेरी महिमा होगी, लोग क्या सोचेंगे, इसको हटा देता था। फिर दूसरे दिन आता था, फिर दूसरे दिन सोचता था कि मुझे इसका कितना धन्यवाद करूं। फिर तीसरा दिन आता था, फिर खुद अशरीरी बन जाता था, भूल ही जाता था मैं शरीर हूं। फिर चौथे दिन फिर बनाता था, तब तक ये सारी आइडेंटिटी गिर जाती थी। और उस अशरीरी अवस्था में, वहां अशरीर शब्द नहीं प्रयोग किया गया, पर ऐसी एक नथिंगनेस की स्टेज में वो सोफा बनाता था, कुर्सी बनाता था। इसलिए लोगों को बड़ा आकर्षण होता था उसका।
जयपुर में जो पांडे जी हैं, मूर्तियां बनाते हैं, देवी देवी। हम भी गए थे कोई शक्ति मार्केट, तो वो आपको ले जाते हैं, पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े, तो उनके पास एक वो यंत्र, पहले जो हम उन्होंने ऐसा यंत्र बनाया, वो कान पे लगा के ना सुनते थे। ये क्या देखते,
ये जो भी चित्रकार और आर्टिस्ट होते हैं उनमें ये एबिलिटीज होती है, इसको कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन।
वो कहते थे जिस देवी देवता की आवाज आएगी उसी पत्थर से वो।
सेम माइकल एंजेलो के लिए भी है, मैंने मित्र के घर जाता है, एक दुकान होती है उसकी, और दुकान के बाहर एक इतना बड़ा पत्थर रखा होता है, तो माइकल एंजेलो अपने मित्र से कहता है क्या मैं ये पत्थर ले लू? बोलते पत्थर ले लू, धन्यवाद तुम्हारा, कब से पड़ा है, बाधा है हमारे लिए, इतना बड़ा पत्थर दुकान के बीच में कोई उठाता नहीं, कोई लेके नहीं जाता। वो उसको लेके जाता है और एक मास के बाद वो मित्र माइकल एंजेलो के घर आता है। वो देखता है एक बहुत ही सुंदर चित्र है, उसका ताज है और उसकी माँ की गोद में है। वो मित्र देखता है, हाँ इतना सुंदर चित्र, मुझे ये चित्र चाहिए, ये मूर्ति, मूर्ति बनाता है ना। तो कहता है ये मूर्ति आपने कहाँ से बनाई, कैसे बनाई? वो कहता है ये वही पत्थर है जो तुम्हारे घर दुकान के बाहर था। तो वो पूछता है कि तुमको कैसे पता चला? वो कहता है उस मूर्ति में छिपे हुए जीसस क्राइस्ट की मुझे आवाज़ आई कि मुझे मुक्त करो, फ्री मी, मैं इस पत्थर में कैद हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो जीसस नहीं था उसको हटा दिया बस, नॉन जीसस। हाँ ये जो चित्र जो बना हुआ है ना, एक मूर्ति है, मूर्ति माइकल एंजेलो, यस यही वाली मूर्ति, माँ मदर मेरी है और उसके गोदी में घायल जीसस। तो ये जो मूर्ति बनी है ये इस तरह से बनी है, उस पत्थर से। तो घर घर में संदेश पहुंचाने की बात चालू थी, तो उसके लिए कितनी लाइन लिखनी है? एक ही लाइन, पर वो एक लाइन कैसी हो? बेस्ट, खुशी का मंत्र बाबा, बहुत अच्छा, नो थाई सेल्फ, ये बहुत फेमस है ऑलरेडी। चलो घर लौट चले। हाँ इससे पहले भी बताया था, एक किसी ने चित्र भेजा था, ये परमधाम, यहां से एक झूला, ये धरती और यहाँ एक बच्ची झूले में खेल रही है। इधर लिखा था आओ धरती पर खेले, लेट्स प्ले ऑन अर्थ, कितना अच्छा चित्र है, लेट्स प्ले ऑन अर्थ। इस एक ही चित्र में कितना कुछ बता दिया उसने कि हम एक्टर्स हैं, नीचे आ रहे और खेल रहे। तो लाइन बड़ी छोटी हो, पर छोटी लाइन लिखने के लिए बड़ी लाइन लिखने की अभ्यास चाहिए।
हर परिवार की अपनी एक जरूरत होती है, उसको किसी को दुख होता है, किसी को किसी न किसी चीज़ का दुख, के आज दुनिया है तो दुखी होता है मोस्ट, और सब उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हम जो भी संदेश दें उनके दुख को सामने रख,
हाँ जो भी हर एक को अपना लिखना है, इस पर चिंतन करना है। आज एक लाइन हो सकती है, आज ही बदलो, कितनी अच्छी लाइन है। अगला प्रश्न, समान और संपूर्ण बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबको पता है, पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प, देहाभिमान, ये सारी बातें। बाप की बच्चों से सबसे बड़ी आशा क्या है? हर बच्चा क्या बन जाए, समान संपन्न संपूर्ण। अगला प्रश्न, सेवा की सफलता का अगला चरण क्या होना चाहिए? लोग केवल इतना नहीं कहे कि बहुत अच्छा, क्या कहे? भगवान यहाँ आया है, भगवान को पहचान ले, वारिस बन जाए। पूरी मुरली का मुख्य उद्देश्य सदा फकूर में रहकर बेफिक्र बादशाह बनो। तो चिंता, कोई भी पुरुषार्थ जो अगर स्ट्रेस क्रिएट कर रही है तो वो पुरुषार्थ नहीं है। अगर अमृत वेला ही स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, हमने सोच के रखा है 2 बजे उठना है, पर दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस, छोड़ दो उसको। 3 बजे उठना है, स्ट्रेस हो रहा है, उसको छोड़ दो, रिलैक्स। जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती करेंगे तो उठ तो जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, दिन भर नींद आती रहेगी। तो अमृत वेले का उद्देश्य क्या है? खुश रहना, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट तो हो ही नहीं रही, ये पुरुषार्थ सबसे बड़ा दुख का कारण बन चुका है, मुसीबत। तो ऐसा पुरुषार्थ करके क्या करेंगे जिसमें दुखी है बहुत, खिंचातान हो रही है, जिसमें घसीट रहे अपने आप को पकड़ पकड़ के, हर चीज में घसीट रहे, करना है बस, प्रोग्राम करना है बस, कर रहे, उसका उद्देश्य खो गया है, बस करना है, ये करना है, पिछले हाँ सब करते हैं तो हम भी करें, स्ट्रेस, हम पीछे क्यों रहे, बस भाषण करना है, करना है, सब कर रहे हैं तो हम भी भाषण करें। एक मुस्लिम फकीर जुनेद था, उसके पास एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे आपका शिष्य बनना है। जुनेद कहता है कि शिष्य बनना बड़ा कठिन काम है। वो कहता है फिर मुझे आपका भक्त बना लो। वो कहता है सच्चा भक्त बनना बहुत कठिन काम है, तो फिर मैं करूं क्या, कोई आसान काम है क्या? वो कहता हाँ एक काम है, गुरु बनना। वो कहता है अच्छा, गुरु बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे गुरु बनना है। तो जुनेद कहता है जो व्यक्ति गुरु बनना चाहता है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, तुरंत गुरु बना जा सकता है, परंतु ये वही कर सकता है जिसमें योग्यता नहीं है। जिनमें योग्यता नहीं है वो क्या बनते हैं? गुरु। क्योंकि गुरु बनने के लिए क्या चाहिए? कोई योग्यता नहीं चाहिए। इसलिए तो पूरी मुरली का सार क्या क्या सुना आज? सबसे पहले फिकर, तो पुरुषार्थ हमारा टेंशन ना बने, पहली बात। दूसरा क्या सुना? एक चित्र बनाया हमने, एक तरफ मेरा और दूसरी तरफ बाबा। तीसरा हमने क्या किया? एक अभ्यास किया 2 मिनट तक। कौन सा अभ्यास किया? मैं आत्मा हूँ। चौथी बात, हमने मैं आत्मा हूँ बनने के लिए क्या क्या अभ्यास करना है? तो अमृत वेला, रात्रि, माइक्रो पुरुषार्थ, माइक्रो मेडिटेशन, ओरिजिनल जो अभ्यास है मैं आत्मा हूँ उस पर चले जाना, दिन की शुरुआत वहाँ से, दिन का एंड वहाँ पे, ये एक अभ्यास। और क्या देखा? लिखना। और क्या देखा? इमोशंस उसके साथ ऐड कर देना। और क्या देखा? श्वास के साथ उसको जोड़ देना, इमोशंस को ऐड कर देना, श्वास के साथ जोड़ देना, क्रिया के साथ जोड़ देना। रात को सोते समय अमृत वेला और परिस्थितियों के समय फिर से वही प्रैक्टिस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। एक इसमें फोकस्ड रहेगा, क्योंकि मैं शांत स्वरूप के साथ में फिर दूसरा आ जाएंगे, मैं प्रेम स्वरूप को क्यों छोड़ेंगे फिर? शांति को याद करेंगे तो अशांति भी याद आ सकती है, दुख भी याद आ सकता है। केवल खालिस शुद्ध अभ्यास, मैं आत्मा हूं, कुछ भी नहीं जोड़ना उसके साथ। फिर उसके बाद आगे क्या देखा? एक लाइन पर, एक लिविंग लाइन, टू राइट अ लिविंग लाइन वन मस्ट वेट, क्या कहा जाता है? एक जीवंत लाइन लिखने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, एक जीवंत लाइन लिखने के लिए, ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में खून भी बहाना पड़ सकता है। जीवंत लिविंग लाइन, एक लाइन बोलने के लिए 1 घंटे का चिंतन चाहिए, लिविंग लाइन बोलने के लिए। और क्या देखा? माइकल एंजेलो, तो वो कारपेंटर, ये 2 लोग देखे, तो हमको आवाज और शुरुआत में कविता एक सुनाई थी उस कन्या की, और उसकी माँ की, क्या कहती है वो? वो कहती है मैं यहाँ रुक नहीं सकती। वो कहती है अरे रुको रुको, तुम्हारा पति आ रहा है, तुम्हारा मंगेतर आ रहा है। वो कहता मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि मुझे आवाज़ आ गई है, विवाह गीतों और लोरियों की लय में दुख छिपा है। आज सूर्य की हंसी तो कल मृत्यु की हवा बहती है। वन के झरनों की मधुर ध्वनि मुझे अधिक प्रिय लगती है। मेरी माँ मैं रुक नहीं सकती, परियों का लोक मुझे पुकार रहा है। ओम शांति।
चिंतन 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 कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन। Thank you.